छायावाद की भूमिका में चौथा शीर्षक है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। आधुनिक कवि की सामाजिक स्वाधीनता और व्यक्तिक विकास की भावना यदि एक ओर प्राचीन रूढ़ मर्यादाओं के विरोध के रूप में प्रकट हुई तो दूसरी ओर प्रकृति प्रेम के रूप में। प्रकृति प्रेम से सामाजिक स्वाधीनता और व्यक्तिक विकास का क्या संबंध है, यह सहसा समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम स्वच्छंदतावादी कवियों के मुख से यह सुनते हैं कि कविता करने की प्रेरणा उन्हें प्रकृति से मिली, तो सोचना चाहिए कि प्रकृति में आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसने मुक्तिकामी स्वच्छंदतावादी कवि को सबसे अधिक आकृष्ट किया। राष्ट्रीय जागरण के उस युग की प्रायः अनेक कविताओं और कहानियों में दिखलाया गया है कि देश प्रेम की भावना प्रकृति प्रेम से ही उत्पन्न हुई और फिर उसके परिणाम स्वरूप भावुक हृदय देश सेवा तथा देशोद्धार के लिए प्रवृत्त हुए। चंडी प्रसाद हृदयेश की संकल्प कहानी में दिखलाया गया है कि राजीव सरोजनी और कुमुद का पूरा परिवार प्रकृति आनंद की खोज में घर से बाहर उन्मुक्त प्रकृति में निकल पड़ता है और वहाँ वे एक योगीराज की कृपा से देखते हैं कि हिमालय के तुषार मंडित श्रृंग पर रत्न किरीट धारिणी अपूर्व लावण्यमयी एक देवी मूर्ति चंद्रिका से भी उज्ज्वल अंबर परिधान किए हुए खड़ी है। प्रश्न करने पर योगीराज बतलाते हैं कि यह मातृभूमि की मूर्ति है जो उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और देश सेवा का संकल्प लेते हैं। देश प्रेम का आरंभ प्रकृति प्रेम से किस तरह होता है, इसे समझाते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य पशु पक्षी लता गुल्म पेड़ पत्ते कण पर्वत नदी निर्जर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी शुद्ध करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी और औसत आमदनी का पर्ता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। लेकिन आधुनिक युवक प्रकृति में गया क्यों, क्या देश प्रेम के लिए नहीं? क्योंकि यह भाव तो प्रकृति में जाने के बाद उत्पन्न हुआ, तो क्या स्वयं प्रकृति से प्रेम के कारण नहीं? क्योंकि प्रेम से पहले तो परिचय की आवश्यकता है, तब फिर आधुनिक युवक अपने समाज को छोड़कर प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में क्यों गया? इसी क्यों का जवाब राम नरेश त्रिपाठी का पथिक अपने प्रिया को देता है। पुण्य चरित सज्जन से विषयी कलमश मध्य निवासी न्यायी से वंचक दाता से कृपण विशेष विलासी जहां श्रमी से क्रयी विक्रयी वेश्या सुखी सती से निर्जन वन है परम सुखद उस न्याय रहित जगत से। क्योंकि यहां प्रेम का राज्य है, अनंत सुषमा है, अक्षय सौंदर्य है और सबसे बढ़कर यहां अबाध स्वच्छंदता है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है, जाना नहीं चाहता हूँ मैं क्षण भर को भी जग में चलता रहूँ, यही इच्छा है सदा प्रेम के मग में, यह इच्छा है नदी और नालों का वेश धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती से पर्वत से उतरूंगा, यह इच्छा है वन सुगंध फूलों के बीच बसूंगा, यह इच्छा है कुंज कुंज में वायु बिना विचरूंगा। पुरानी समाज व्यवस्था के घुटते हुए वातावरण की अपेक्षा आधुनिक युवक को प्रकृति के बीच खुला वातावरण मिला। प्रकृति के राज्य में उसे पशु पक्षियों नदी नालों हवा बादल सब में उन्मुक्त और निरंकुश स्वच्छंदता के दर्शन हुए। इसी स्वाधीनता की टोह में आधुनिक कवि प्रकृति के क्षेत्र में आया। पुरानी समाज व्यवस्था में उसकी व्यक्तिकता खो गई थी, लोग हर जगह उसे बुरी तरह घेरे रहते थे, सम्मिलित परिवार में एकांत का सर्वथा अभाव था। एक वाक्य में वर्ड्सवर्थ के अनुसार द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसी जड़ सामूहिकता तथा सामाजिकता से उबरने के लिए ये आधुनिक युवक ने प्रकृति में प्रवेश किया और यहाँ उसे अपने व्यक्तित्व के विकास का वातावरण दिखाई पड़ा और यही उससे अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य का अनुभव हुआ। इससे एक नई बात पर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि व्यक्तिक स्वाधीनता से ही स्वस्थ सामाजिकता का विकास संभव है। पुराने ढंग की निर्वैयक्तिक अथवा व्यक्तित्व को दबाने वाली सामाजिकता से राष्ट्रीय भावना का उदय न हो सका। लेकिन ज्यों ही आधुनिक युग में लोगों ने व्यक्तिगत स्वाधीनता का अनुभव किया, राष्ट्रीय स्वाधीनता की ओर भी कदम उठाया। पारिवारिक सीमा में इसी बात को यूँ समझ सकते हैं कि विशाल सम्मिलित परिवार में लोगों के बीच उतना सौहार्द नहीं रहता जितना उसके विघटित हो जाने के बाद छोटे छोटे परिवारों की विभिन्न इकाइयों में हो जाता है। इसलिए आधुनिक युग के प्रभाव से व्यक्तिगत स्वाधीनता, छोटे छोटे परिवारों की रचना, नूतन सामाजिकता और राष्ट्रीयता का विकास प्रायः एक साथ और अन्याश्रित रूप में हुआ। नवीन आर्थिक व्यवस्था ने नौकरी पेशा व्यक्तियों की वृद्धि की। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को घर से ले आकर शहरों में बसने के लिए मजबूर हुए। शहर के भी बड़े बड़े परिवार वाणिज्य व्यवसाय की सुविधा के लिए अथवा परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति के कारण विभाजित होने लगे। इस तरह लोगों को एक हद तक वैयक्तिक स्वाधीनता मिली। नए शिक्षा ने विविध संस्थाओं तथा कार्यों का जाल बुना। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनेक स्तरों पर सामाजिक संबंध स्थापित हुए। ऐसे नवीन सामाजिक संबंध समूचे देश में स्थापित हुए। रेल, तार, डाक वगैरह ने इन सभी सामाजिक इकाइयों को एक राष्ट्रीय चेतना में बांध दिया और देश में राजनीतिक स्वाधीनता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार आधुनिक व्यक्ति का प्रकृति की ओर दौड़ना व्यक्तिगत स्वच्छंदता की आकांक्षा के लिए तो था ही, व्यक्तिगत स्वाधीनता का परिणाम भी था। यदि यह नूतन प्रकृति परिचय इस स्वाधीनता का परिणाम न था तो छायावाद युग से पूर्व द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग तथा उससे भी पूर्व के 500-600 वर्षों के संपूर्ण मध्य युग में ऐसा प्रकृति प्रेम संभव क्यों नहीं हो सका। प्रकृति तो पहले से ही मौजूद थी और वह भी लगभग इसी रूप में, बल्कि आधुनिक रूप से अधिक वन्य रूप में। फिर भी पूर्ववर्ती कवि इससे उदासीन रहे। आधुनिक वैज्ञानिक युग के लोगों की अपेक्षा मध्य युग के धार्मिक लोगों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भी अधिक थी। फिर भी वे लोग प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करते रहे। कुछ लोगों को यह विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, किंतु यह सच है कि विज्ञान के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी आधुनिक मानव ने उससे प्रेम किया। जिस प्रकृति से संघर्ष, उसी से प्रेम। यह आधुनिक युग का ही सत्य नहीं बल्कि मानव जाति के समूचे इतिहास का यही निष्कर्ष है। आदिम युग से ही मनुष्य भयंकर वन्य प्रकृति से संघर्ष करता हुआ उसे अपने अनुकूल बनाकर उसके सौंदर्य का उद्घाटन करता चला आ रहा है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मानव स्वयं भी प्रकृति के अंतः संघर्ष का परिणाम है। वह प्रकृति से ही पैदा हुआ है और प्रकृति का सर्वोत्तम। आधुनिक वैज्ञानिक युग के लोगों की अपेक्षा मध्य युग के धार्मिक लोगों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भी अधिक थी। फिर भी वे लोग प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करते रहे। कुछ लोगों को यह विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, किंतु यह सच है कि विज्ञान के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी आधुनिक मानव ने उससे प्रेम किया। जिस प्रकृति से संघर्ष, उसी से प्रेम। यह आधुनिक युग का ही सत्य नहीं है बल्कि मानव जाति के समूचे इतिहास का यही निष्कर्ष है। आदिम युग से ही मनुष्य भयंकर वन्य प्रकृति से संघर्ष करता हुआ उसे अपने अनुकूल बनाकर उसके सौंदर्य का उद्घाटन करता चला आ रहा है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मानव स्वयं भी प्रकृति के अंतः संघर्ष का परिणाम है। वह प्रकृति से ही पैदा हुआ है और प्रकृति का सर्वोत्तम विकास है। इसलिए मानव का अस्तित्व में आना ही प्रकृति पर विजय है। तात्पर्य यह है कि छायावादी कवियों का प्रकृति की ओर झुकना, प्रकृति को इतना महत्व देना, प्रकृति के स्वतंत्र सत्ता को काव्य में प्रतिष्ठित करना और प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित करना, यह सब आधुनिक विज्ञान का परिणाम है। विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को जानने की चेष्टा की। धर्म ने प्रकृति के प्रति अंधश्रद्धा का भाव जगाकर जहाँ प्रकृति को जानने से रोका, वहाँ विज्ञान ने विवेक के द्वारा उसका रहस्योद्घाटन किया। धार्मिक अंधविश्वास ने जिस प्रकृति से मानव को बांध रखा था, विज्ञान ने उसी को बंधन से मुक्त किया। विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति से अलगा कर फिर उसे प्रकृति के साथ अच्छी तरह से लगा दिया। जिस तरह नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने वैयक्तिक परिवारों को सम्मिलित कुटुंब से अलगा कर उसमें उच्च स्तर का परस्पर स्नेह सौहार्द स्थापित किया, उसी तरह विज्ञान ने भी मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करके प्रकृति के प्रति उसकी रागात्मकता बढ़ा दी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिस युग में मनुष्य ने प्रकृति पर सबसे अधिक विजय प्राप्त की, उसी समय उसने प्रकृति पर सबसे अच्छी कविताएं लिखी। वाल्मीकि कालिदास का प्रकृति काव्य प्रकृति पर आरंभिक विजय का परिणाम है, तो छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण आधुनिक विजय का। इस प्रकार सामाजिक स्वाधीनता और प्राकृतिक मुक्ति से छायावादी कवि को प्रकृति का जो नया परिचय प्राप्त हुआ, वह एकदम नूतन जीवन दृष्टि के समान मालूम हुआ। छायावादी कवि को ऐसा लगा कि यह आलोक स्वयं प्रकृति से ही आ रहा है। रविन्द्रनाथ की निर्झरेर स्वप्नभंग कविता में इस प्राकृतिक आलोक का चित्रण बड़े ही मार्मिक भावावेगपूर्ण ढंग से हुआ है। आज ए प्रभाते रवि रविवर कर केमने पशिलो प्राणेर पर केमने पशिलो गुहान आधारे प्रभात पाखिर गान ना जाने कैनो रे एत दिन परे जागिया उठिलो प्राण। और इस आलोक में उन्हें दिखाई पड़ा कि भूधर थरथर कांप रहा है, राशि राशि शिलाएं खसक रही हैं, सलील फेनिल होकर फूल फूल रहा है, दारुण रोष से गरज रहा है और यहाँ वहाँ पागल की तरह मत होकर दौड़ रहा है। प्रभात की पहली किरण ने जिस प्रकार रविन्द्रनाथ के निर्झर हृदय का स्वप्न भंग कर दिया, उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंथ के कवि को भी स्वप्न में चौंका गई। प्रभात प्रथम रश्मि ने पंत की बाल विहंगनी को गान तो सिखाया ही, उनके तिमिराच्छन्न जगत को सहसा विभिन्न नाम रूपों में बदल दिया। जहाँ निराकार तम के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न देता था, वहाँ सुंदर सृष्टि दिखाई पड़ने लगी। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जग जाल में घर धर कर नाम रूप नाना। फिर तो द्रुमदल पुलकित हो सिहर उठे, सुप्त समीरण अधीर हुआ, कुसुम अधरों पर हास झलका और खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, अस्पंदन कंपन औ नवजीवन सिखा जगने अपनाना। कवि को संसार का नया परिचय प्राप्त हुआ। निराला के तुलसीदास के भी सम्मुख जब चित्रकूट के तरु विरुद्ध आए, तो उनके भी मन में नए भाव पैदा हुए। प्रकृति ने उनसे ऐसी अभूतपूर्व भाषा में बातें की कि वे उसे अनुभव करते हुए भी ठीक ठीक न समझ सके। जैसे उषा को कुहरे का टेढ़ा जाल घेरे हो, उसी तरह प्रकृति भी एक ऐसी भाषा में बातें कर रही थी जो पूरी तरह समझ में न आती थी। वह भाषा छिपती छवि सुंदर, वह खुलती आभा में रंग कर, वह भाव कुरल कुहरे सा भर कर भाया। फिर भी प्रकृति ने उन्हें एक ऐसी चेतना का पता दिया जिसके स्पर्श से ही पाषाण खंड हार बनते हैं, नहीं तो प्रकृति में झरने झाड़ी नदी कगार पशु पक्षियों के विहार को छोड़कर और कुछ नहीं है। तुलसी को यह चेतना पूर्व जन्म के संस्कार का ही उदय प्रतीत हुई। प्रकृति ने उनके मन में कल्पना के पंख लगा दिए और वह मुक्त नभ में वन विहंग की तरह उड़ चला। प्रकृति दर्शन से छायावादी कवि को यह जो नया आलोक मिला, उसने सामान्य रूप से उसकी संपूर्ण जीवन दृष्टि बदल दी और विशेष रूप से प्रकृति संबंधी सौंदर्य दृष्टि उसे पहली बार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का बोध हुआ। पहले अधिक से अधिक प्रकृति का चित्रण या तो कथा प्रसंग में किया जाता था अथवा किसी मानवीय क्रिया की पृष्ठभूमि के रूप में, जैसे कुमार शंभोम के आरंभ में हिमालय का विस्तृत वर्णन कथा प्रसंग का एक अंग है और मेघदूत का मेघ विरह निवेदन का दूत मात्र है। लेकिन हिंदी के भक्त कवियों अथवा रीतिवादी कवियों ने तो प्रकृति को इससे भी गौण स्थान दिया है। वहां प्राय प्रकृति का चित्रण या तो अप्रस्तुत विधान के रूप में हुआ है अथवा उद्दीपन के रूप में। इसीलिए मध्ययुग के कवियों ने अधिक से अधिक प्राकृतिक वस्तुओं का नाम गिनाकर ही संतोष किया है और उन प्राकृतिक वस्तुओं की सूची भी अधिक लंबी नहीं। उसी तरह पूर्ववर्ती कवियों में भी प्रकृति की महिमा से अनभिज्ञ होने के कारण उसके साथ अत्यंत सामान्य व्यवहार करते थे, लेकिन अब तो इस अर्जुन को प्रकृति ने श्री कृष्ण की ही तरह अपना विराट रूप दिखला दिया। प्रकृति के इस सार्वभौम रूप से अभिभूत होकर छायावादी कवि ने अपने अनेक भाव छवसित गीत लिखे, लेकिन जब विराटता का आतंक कुछ कम हुआ तो उससे हृदय में एक और ही आलोक उदित हुआ। इस आलोक में छायावादी कवि ने प्रकृति के परिचित दृश्यों को नए रूप में देखा और अनेक अपरिचित तथा अदृष्ट वस्तुओं पर भी दृष्टिपात किया, जैसे संध्या और निशा पूर्व परिचित दृश्य है। इनका वर्णन कवि जन न जाने कब से करते आ रहे हैं, लेकिन छायावादी कवि ने संध्या और निशा में नवीन सौंदर्य देखा। संध्या का वर्णन त्रिवेदी युग के कवि हरियाउद इस प्रकार करते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। जिसमें गगन का लोहित होना और तरु शिखा पर प्रभा का राजना, इन दो स्थूल रंगों का चित्रण है, लेकिन निराला की संध्या सुंदरी जब मेघमय आसमान से धीरे धीरे उतरती है तो उसकी मंथर गति में अपूर्व ढंग की शांति शांति निरवता और शिथिलता का अनुभव होता है। यही नहीं, जब वह असलता की सी लता सखी निरवता के कंधे पर डाले बाह छांसी अंबर पथ से चली, तो उसके तिम्रांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास मिलता है। निराला की संध्या सुंदरी की गति जिस छंद में बद उठी है और उसका रूप जिन सूक्ष्म रेखाओं और छायाओं में आभासित हुआ है, वह अभूतपूर्व है। यही अंतर हरियाउद के नैश वर्णन और प्रसाद के नैश चित्रण में है। हरियाउद की सजी धजी आभूषणों से लदी गोल और चौड़े मुंह वाली रात यह है। अत्युज्जला पहन तारक मुक्त माला दिव्यांबरा वन अलौकिक कौमुदी से भावों भरी परम मुग्ध करी हुई थी राका कलाकार मुखी रजनी पुरंध्री। इस रजनी पुरंध्री को प्रसाद की माधव यामिनी के बराबर रख कर देखिए और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास, कालिमा धुलने लगी धुलने लगा आलोक, इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक। कहाँ हरियाउद की रजनी की चटक मटक और कहाँ प्रसाद की कामिनी का धीर पद विन्यास, कहाँ अत्युज्जला तारक माला और कहाँ धुलती हुई कालिमा में घुलता हुआ आलोक। भावों भरी का प्रमाण पत्र पाकर भी हरियाउद की रजनी भाव शून्य है, लेकिन प्रसाद की यामिनी उस प्रमाण पत्र के अभाव में भी भाव प्रमाण है। यह तो हुई परिचित दृश्यों की बात। पंत ने हिंदी कविता में पहली बार कुछ ऐसे पर्वतीय दृश्यों का चित्रण किया जो कवियों तथा पाठकों के लिए सर्वथा नए थे। यह रहा शैल और जलत का खिलवाड़, बादलों का छायामय मेल, घूमते हैं आँखों में फैल अमनी और अंबर के वे खेल, शैल में जलद जलद में शैल, शिखर पर विचर मरुत रखवाल, वेणु में भरता है जब स्वर मेमनों से मेघों के बाल, कुदकते थे प्रमुदित गिरी पर, और पहाड़ी आकाश की भी अपनी विशेष शोभा होती है। विहंगम शाह बैठा गिरी पर, सुहाता था विशाल अंबर। दूसरी ओर प्रसाद का समुद्र वर्णन है। समुद्र के रौद्र रूप का जैसा चित्रण कामायनी के चिंता सर्ग में हुआ है, संपूर्ण हिंदी कविता में उससे पहले नहीं मिलता। समुद्र का वर्णन बेचारे रीतिकाल के कवि क्या करते। उन्हें घर की दीवारों तथा अरहर के खेतों से ही फुर्सत न थी, फिर वे समुद्र कैसे देखते। और उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। पुराने दृश्यों को नए रूप में तथा एकदम नए दृश्यों को चित्रित करने के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने प्रकृति के विविध ऐन्द्रिय बोध जगाने वाले दृश्यों का भी अंकन किया। लाल नीले रंगों के बादल, भौरा कोकिल चातक आदि के स्वर तथा कुछ फूलों की गंधों की चर्चा संभवतः पहले के भी कवियों ने की है, लेकिन वर्ण ध्वनि गंध स्पर्श और स्वाद संबंधी सूक्ष्म ऐन्द्रिय बोध जगाने वाले दृश्य जिस मात्रा में छायावादी कवियों ने आके पहले नहीं मिलते। कांपती हुई अग्निशिखा के रंग को स्पष्ट करते हुए प्रसाद उसे मधुपिंगल तरल अग्नि कहते हैं, तो हिम संसरित पर पड़ते हुए आलोक का वर्ण सौंदर्य दिखलाने के लिए इस प्रकार की कल्पना करते हैं। शीत सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग, दूसरी ओर पंत नील लहरों पर सांध्य किरण के पुछते हुए आलोक को इन शब्दों में विविक्त करते हैं। लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर पड़ नई नील जो अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। वर्ण विवेक की ही तरह ध्वनि विवेक के द्योतक चित्र पंत के यहाँ काफी मिलेंगे। रात के सन्नाटे के बारे में पंत कहते हैं, गुंजित अलिसा निर्जन अपार, और सांध्य वन में क्रमशः घिरती हुई निरवता के लिए पत्रों के आनक अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। पावश में विभिन्न प्रकार के घुले मिले स्वर आते रहते हैं, उन्हें एक एक करके अलगाते हुए पंत कहते हैं, पपियों की वह पीन पुकार, निर्झरों की भारी झरझर, झिंगुर की झीनी झनकार, घनों की गुरु गंभीर घर, बिंदुओं की छंती छनकर, दादुरों के वे दुहरे स्वर, हृदय हरते हैं विविध प्रकार शैल पावश के प्रश्नोत्तर। और तो जो हैं सो हैं ही, लेकिन पहाड़ों में वर्षा के स्वर की प्रतिध्वनि का यह चित्र अद्वितीय है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के विषय में जो इतने सूक्ष्म और नवीन सौंदर्य बोध का परिचय दिया, वह इसलिए नहीं कि इस बीच प्रकृति में कोई नया सौंदर्यवर्धक दृश्य जुड़ गया था, अथवा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा छायावादियों में प्रतिभा अधिक थी। वस्तुतः यह नवीन सौंदर्य बोध मानव और प्रकृति के नवीन संबंध में उत्पन्न हुआ है। प्रकृति ने मनुष्य में सौंदर्य बोध जगाया और मनुष्य ने उस सौंदर्य बोध के द्वारा प्रकृति में छिपे हुए नए सौंदर्य का उद्घाटन नेरे नयनों से। मनुष्य ने जो प्रकृति को देखा, खरी निकाई निकलती चली गई। इस तरह प्रकृति और मानव दोनों परस्पर वर्धमान हुए, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य से छायावादी कभी 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 इतना कल्पना प्रवण हो उठा कि प्रस्तुत प्राकृतिक दृश्य को देखते देखते उसके मन में कल्पना के पंख लग गए और वह ऊपर उड़ चला। फलतः उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत से मिलते जुलते तथा उससे संबंध अनेक अप्रस्तुत दृश्य तैर आए, जैसे छाया को देखते ही पंत बोल उठते हैं, कहो कौन तुम परिहत वासना, म्लान मना भूपतितासी, वात हता विच्छिन्न लतासी, रतिश्रांता ब्रजवनितासी। ऐसी अप्रस्तुत योजना में छायावादी कवियों ने आकार साम्य की अपेक्षा नए ढंग के प्रभाव साम्य पर विशेष ध्यान दिया। जहाँ तक यह प्रभाव साम्य किसी गहरी अनुभूति पर आधारित रहता था, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी वह भावाबेग जनित कल्पना में इतनी दूर बह जाता था कि सारी अप्रस्तुत योजना केवल कौतुक के लिए जुटाए हुए सामानों की तरह मालूम होने लगती थी। जैसे उसी छाया को पंत पछतावे की परछाई, कटी छटी नव कविता, दुर्बलता अंगड़ाई, दर्शन की अति जटिल ग्रंथि आदि सी कहने लगते हैं, तो छाया से हटकर मन इन भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बहक जाता है और थोड़ी देर बहकने के बाद इस बहक का अनुभव करके खिन्न हो उठता है। दूसरी ओर प्रकृति सौंदर्य को देखकर कवि का मन कभी कभी एकदम अंतर्मुखी हो उठता है और वह प्रकृति के वस्तुनिष्ठ सौंदर्य को नहीं देख पाता। उसके स्थान पर वह अपने ही सूक्ष्म मनोभावों को देखने लगता है। इस भावनिष्ठता के परिणाम स्वरूप पंत की चांदनी धीरे धीरे कपूर सी उड़ती उड़ती इतनी अदृश्य हो जाती है कि अंत में उन्हें हैरान होकर कहना पड़ता है, वह है, वह नहीं, अनिर्वच। जब तक वह लघु परिमल के घन सी थी तब तक तो गनीमत, लेकिन जब वह अनुभूति मात्र सी उर्मे रह गई तो भाववादी दृष्टिकोण की हद हो गई। पर ऐसा पंत के ही यहाँ ज्यादा हुआ है।